server555.com audio production the house on the borderland by william hop hoyson part 2
सुबह ये वाका हुआ है और रात को मैंने देखा कि खिड़की से कोई शय अंदर देखने की कोशिश कर रही है। ये तो सुअर लगता है, मगर ये वही चीज थी जो मुझे अपने अजीब सफर के दौरान सब्ज इमारत के नजदीक दिखाई दी थी। सुअर और इंसान के दरमियान की शक्ल, मगर मुंह बिल्कुल सफेद, करी नफरत अंगेज। मैं उस चीज को खौफजदा हालत में देख रहा था, मगर उसकी आंखों से लगता था कि उसे अकल है। उसके दो अगले हाथ छोटे थे, जो अगरचे इंसानी हाथ से मुशाबे थे, मगर उनमें पंजे मौजूद थे। मैं खौफ से उसे देखता रहा और वो गायब हो गई। मैं बाहर गया, उसे तलाश किया, बंदूक मेरे हाथ में थी, मगर कुछ ना मिला। मैंने तहैया कर लिया कि उसे ज़रूर तलाश करके मार दूंगा। पेपर के जख्मी होने की वजह से मैं चुकन्ना था। मेरी बहन ने मुझसे पूछा मैं क्या तलाश कर रहा हूँ, मगर मैंने जंगली बिल्ली का कहकर बात टाल दी। मुझे दरख्तों के दरमियान से आवाज़ आई, जिस तरफ गोली चलाई, जिस पर वहाँ से कोई भागा। उस रात बहन के सोने के बाद मैंने तमाम खिड़कियों और दरवाज़ों का जायज़ा लिया और उन्हें मजबूती से बंद किया। इत्मीनान होने के बाद किताब पढ़नी शुरू की, मगर तवज्जो ना दे सका और आग के करीब बैठ गया। फिर किसी शय की आवाज़ आई, कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं सख्त खौफजदा था, कपकपी आ रही थी। आवाज़ बंद हुई, घंटा गुजर गया, फिर आवाज़ दोबारा आना शुरू हुई। लगता था ये ज़मीन के अंदर से आ रही है। दिन होने तक मैं खौफजदा रहा और जागता रहा। दिन की रोशनी हुई तो मेरा डर कम हुआ। डरते डरते दरवाज़ा खोला, बाहर कुछ भी नहीं था। दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जाकर सो गया। एक हफ्ते बाद की बात है, मैं और बहन शाम के वक्त बाग में थे। मैं हर वक्त बंदूक अपने पास तैयार रखता, अगरचे पिछले पूरे हफ्ते कोई गैर मामूली वाका पेश नहीं आया। अचानक मैंने एक धमाके की आवाज़ सुनी जो ज़मीन के गढ़े की तरफ से मालूम होती थी। वहाँ से मिट्टी के बादल उड़ते दिखाई दिए। बहन जो घबरा गई थी उसे वहाँ ठहरने का कहकर मैं धमाके की जानिब भागा। बंदूक मेरे हाथ में थी। गड्ढे में झांक कर देखा, शुरू में अंधेरा होने की वजह से कुछ नजर ना आया, फिर कोई चीज़ हिलती नजर आई। दो सफ़ेद रंग की सुअर की शक्ल से मुशाबेह चीज़ें ऊपर आने की कोशिश कर रही थीं, फिर उनके पीछे दूसरी बहुत सी उसी तरह की चीज़ें। एक ने मुझे देखा, आवाज़ निकाली और फिर तमाम घड़े से जवाब आया। सब चिल्ला रहे थे, मैं घबरा गया और सबसे करीब के मुंह पर गोली चलाई। वो नीचे गिरता नजर आया। मैं वापस भागा, मगर बहुत सी गंदी चीज़ें मेरे पीछे भाग रही थी और अजीब अजीब आवाज़ें उनके मुंह से निकल रही थीं। घर के करीब मुझे अपनी बहन नजर आई, जो गोलियों की आवाज़ सुनकर आ रही थी। अपनी जान बचाओ और भागो। हम दोनों पूरी रफ्तार से घर की जानी भाग रहे थे और वो चीज़ें हमारा ताकुब कर रही थीं। एक मेरे बहुत करीब आ गई, मैंने उसके गंदे चेहरे को देखा और बंदूक चला दी। वो कराहता हुआ ज़मीन पर गिरा, मगर वो कराहने की आवाज़ तकरीबन इंसानी थी। बाकी भी करीब आ चुके थे। मैं दोबारा भागा, घर में दाखिल हुआ और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मेरी बहन भी घर में आ चुकी थी, मगर उसकी हालत ख़राब थी। एक भयानक मखलूक दरवाज़े को खुरच कर खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने तमाम दरवाज़ों और खिड़कियों को देखा, वो मजबूती से बंद थीं। दरवाज़े को पंजों से खुरच कर खोलने की कोशिश से पता चलता था कि वो जानवर नहीं बल्कि ज़हीन मखलूक हैं। अब मैंने बहन के मुंह में पानी डाला तो वो कुछ होश में आई, मगर चीखें मारकर भागी। शायद उसके जहन में इन हालात की वजह से असर पड़ चुका था। रात हो रही थी, मगर अजीब मखलूक की आवाज़ें कानों में आ रही थीं। शायद ये ज़मीन के नीचे से आ रही थीं। मैं तहखाने में गया, मगर कुछ ना मिला। वापस आया तो खिड़की में वो मखलूक खड़ी थी। खिड़की में मजबूत सलाखें थीं, मगर मैं खौफजदा हो गया था, क्योंकि वो मुसलसल अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने हाथ में दर्द महसूस किया, क्योंकि लालटेन का गर्म हिस्सा अपनी परेशानी में पकड़कर हाथ जख्मी कर लिया था। झुंझलाहट में वो लालटेन उठाई और खिड़की पर दे मारी, जो टूटकर सलाखों के दूसरी तरफ गिरी और जलता हुआ तेल बाहर मौजूद उस खौफनाक मखलूक पर गिरा जिनकी चीखों की आवाज सुनाई दी। इस हादसे के बाद वो खिड़की से गायब हो गए। मैंने बंदूक में गोलियां भरी और छत पर किया। हल्की रोशनी में वो बहुत बड़ी तादाद में घर की दीवार के साथ नजर आए। वो क्या कर रहे थे मालूम नहीं, मगर मैंने उन पर फायर किया। एक मरा, बाकी दरख्तों में भाग गए। दूर गढ़े से एक आवाज आई और दरख्तों में छुपी हुई उस मखलूक ने मिलकर उसका जवाब दिया। उनके चलने की आवाज और सफेद जिस्म जहां भी नजर आता मैं फायर करता। गोली लगती और चीख की आवाज सुनाई देती। कुछ देर खामोशी के बाद उनके गुस्से की आवाजें आईं। वो शायद जंग का मंसूबा बना रहे थे। मैंने नीचे जाकर दोबारा तमाम दरवाजों और खिड़कियों का मुआयना किया, तमाम महफूज थीं। एक कमजोर दरवाजा दिखाई दिया जिसके सामने भारी लकड़ियां रखकर उसे मजबूत किया। अब मुझे इत्मीनान था, मेरी तरकीब ने मुझे बचा लिया, क्योंकि उसी दरवाजे पर उन सब ने मिलकर जोर डाला और तोड़ने की कोशिश की, मगर भारी लकड़ियों ने दरवाजे को महफूज रखा। फिर मैंने महसूस किया कि वो मशवरे कर रहे हैं। मैं ऊपर बंदूक के साथ भागा, नीचे झांका और फायर किया। एक बड़ा पत्थर मेरा पैर लगने पर ऊपर से नीचे गिरा। बहुत से जानवर उसके नीचे आए, चीखे मारते हुए मर गए, बाकी वहां से भागे। एक वापिस आया, पत्थर के नीचे अपने साथियों को देखा, वहां से कुछ उठाकर मुंह में डाला, मैंने उस पर फायर किया, वो भी मारा गया। मैं नीचे भागा के दरवाजे को देखूं, एक दरवाजे को वो 6 इंच खोलने में कामयाब हो चुके थे, मगर भारी चीजें लगी होने की वजह से वो अंदर ना आ सके। मैंने दोबारा उसे मजबूती से बंद किया और फिर ऊपर किया। रात के 3 बज रहे थे। रात गुजर गई, सुबह मैं बाग में आया, पत्थर मौजूद था मगर उसके नीचे कोई मखलूक दबी हुई ना मिली, वो गायब हो चुकी थी। शायद लाशें उनके साथ ही ले गए थे। मैं बहुत थक चुका था, शदीद थकन की वजह से मैं अपने कमरे में जाते ही सो गया और 11 घंटे सोता रहा। किसी के चलने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। क्या मेरी नींद के दौरान वो मखलूक अंदर आ गई थी? दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, मगर वो तो मेरी बहन थी। मैं खामोशी से उसके पीछे गया और ये देखकर हैरान हुआ कि वो मेरी बेवकूफ़ बहन दरवाज़ा खोल रही थी। मैं भागा और उसे रोका। मेरी तरफ खौफजदा नज़रों से देखते हुए उसने चीखें मारीं। मैंने उसे ख़तरे से आगाह किया, वो कांप रही थी, खौफ से उसकी हालत ख़राब थी। पेपर के ज़ख्म अब भरने लगे थे, जिससे मैंने खुशी महसूस की। फिर बंदूकों का जायज़ा लिया ताकि रात छत पर बसर करूं और उन शैतानी मखलूक का मुकाबला करूं। रात आराम से गुजर गई। सुबह के वक्त मैं थक चुका था, क्या वो मखलूक जा चुकी है? दिन निकल रहा था। उसी वक्त मकान के नीचे तह खाने से पानी की बूंदों की आवाज़ आई। मैं वहां गया जहां बहुत से कमरे मौजूद थे। मोमबत्ती की रोशनी में एक दरवाज़ा नजर आया, मगर दूसरी तरफ गहरा अंधेरा था और गहराई। मगर ये क्या, वहाँ बहुत गहराई से हल्की बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं घबराहट में कभी नीचे गहराई में देखता, कभी पीछे अपने तहखाने को, फिर दरवाज़ा बंद किया और उसके आगे हिफाजत के लिए बड़े बड़े पत्थर लगा दिए और वापस ऊपर आ गया। बहन अगरचे बहुत खौफजदा थी, मगर नाश्ता बनाकर मुझे दिया। पेपर ने मेरा इस्तकबाल किया, जो अब बेहतर महसूस कर रहा था। दिन और रात मैं जी भर के सोया और फिर छत पर शैतानी मखलूक का इंतज़ार किया। 6 दिन गुजर गए, वक्त कितना आहिस्ता गुजर रहा था। 9वें दिन मैंने बाहर जाने का फैसला किया। ऊपर से देखा सब कुछ ठीक लग रहा था, बंदूक ली और बाहर आ गया। पेपर मेरे साथ था, वो भी इत्मीनान महसूस कर रहा था। मैंने बंदूक तैयार रखी थी। पेपर आगे आगे चलता हुआ मुझे बड़े घड़े तक ले गया, जहां बहुत सी तब्दीलियां हो चुकी थीं। एक सुराख मजीद नजर आ रहा था और नज़दीक पानी बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उस जाने बढ़ा। अचानक उस जगह की ज़मीन में ऐसी तब्दीलियां कैसे आ गईं? ना कोई जलजला आया था और ना कोई तूफान। पेपर कुछ सूंघता और हर मरतबा घड़े तक आ जाता। यकीनन वो मखलूक उसी घड़े में मौजूद थी। अगले तमाम हफ्ते मैं घड़े की तरफ रोज़ाना जाता रहा और सोचता रहा कि वह ज़रूर गंदी मखलूक इस घड़े के ज़रिए किसी शैतानी दुनिया की तरफ जाती है। आखिर घड़े का ये रास्ता कहाँ जाता है? मगर उन चीज़ों के खौफ की वजह से उस घड़े में उतरने की हिम्मत ना हो सकी। مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خوف کم ہوتا گیا۔ چنانچہ ایک دن وہ آیا جب میں نے نزدیکی درخت پر رسی باندھ کر اسے گڑھے کے اندر لٹکایا اور اس کے ذریعے گڑھے میں اتر گیا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا، مکمل خاموشی، قبر جیسا ماحول۔ پھر کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ پہلے میں گھبرا گیا، مگر پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرا ہی سانس ہے جو دیواروں سے ٹکرا کر گونج پیدا کر رہا ہے۔ مگر ان چیزوں کا خوف مجھ پر غالب آیا اور میں واپس گھر آ گیا۔ پھر دوسرے دن بندوق اور موم بتیوں کے ساتھ اس گڑھے میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں رسی کے ذریعے نیچے اندھیرے میں اتر گیا، آخری مرتبہ آسمان پر نظر ڈالی جہاں بہت گہرے بادل آ رہے تھے۔ موم بتی کی روشنی میں آگے بڑھا، آگے جا کر راستہ الٹی طرف مڑ گیا۔ یہ وہی سمت تھی جہاں میرا گھر واقع تھا۔ 100 گز دور گیا تو پیچھے سے کسی کی بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بندوق تیار کر لی، مگر یہ پیپر تھا جسے میری محبت وہاں لے آئی تھی۔ مجھے اس کی موجودگی بہت اچھی لگی۔ آگے جاتے ہوئے میں اچانک رکا، ورنہ میری موت یقینی تھی۔ آگے اندھیرے میں ایک جانب بہت گہرائی نظر آ رہی تھی، دوسری طرف راستے میں میں آگے چلتا گیا، کچھ جگہوں پر گہرائی نظر آئی۔ مگر یہ کیا، اس راستے پر چلتے ہوئے میں واپس وہاں پر پہنچ گیا جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ یعنی یہ سرنگ گول تھی۔ سرنگ میں ایک جگہ گہرائی میں میں نے پتھر نیچے پھینکا، مگر بہت دیر تک وہ نیچے گرتا رہا، جس سے پتا چلا کہ وہاں کتنی گہرائی ہے۔ ہاں، کسی کے ہلکی آواز میں باتیں کرنے کی آوازیں بہت نیچے سے آ رہی تھیں۔ پیپر کسی کی بو سونگ رہا تھا، مگر یہ کیا، میرے جوتے پانی میں کیسے بھیگ گئے؟ شدید آوازیں آئیں، اوف، شدید پانی باہر سے اندر آنے لگا تھا۔ سیلاب، پیپر اور میں پانی کے آنے کی مخالف سمت میں جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر پھر میرا پیر پھسلا اور پانی مجھے بہا کر لے گیا۔ پیپر میرے پیچھے آیا اور میرا کوٹ منہ میں پکڑ کر مجھے بچایا، ورنہ میں زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھا تھا۔ پانی بڑھ رہا تھا، پیپر کی مدد سے میں رسی تک پہنچ گیا، اوپر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ دراصل شدید بارش سے نزدیکی ندی کا پانی اس گڑھے میں داخل ہو گیا تھا۔ پیپر کے چاٹنے پر میں بہت دیر بعد جاگا۔ 2 ہفتے مجھے بستر پر آرام کر کے صحت ملی، اور پھر میں جائزہ لینے دوبارہ گھڑی کے قریب گیا، جگہ پھر تبدیل نظر آئی۔ واپس گھر آیا اور تہہ خانے گیا جہاں خفیہ دروازہ تھا، اسے کھولا۔ لالٹین کی روشنی سے نیچے گہرائی میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر لالٹین اس کے اندر گری اور نیچے بہت گہرائی میں گئی۔ اوف، یہ تو وہی جگہ ہے جو گھڑے سے میں نے دیکھی تھی، یعنی گھڑے کا راستہ یہاں تک آ رہا ہے۔ اسی لیے پہلی مرتبہ جو آوازیں یہاں سے آئیں وہ انہی گندی مخلوق کی تھیں جو نیچے موجود تھیں۔ میں نے سوچا، اب اس گھڑے میں پانی بھر چکا ہے تو کیا وہ چیزیں مر چکی ہوں گی؟ کیا ان میں میری طرح زندگی تھی؟ میں نے دروازہ بند کر کے پتھر اس کے آگے دوبارہ رکھ دیے۔ میں اب سنجیدگی سے اس گھر کو چھوڑنے پر غور کر رہا تھا، مگر میں اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ جس عورت کو میں نے بہت زیادہ چاہا وہ مجھ سے بچھڑ گئی، مگر نہ جانے کس دنیا سے وہ مجھ سے ملنے اسی گھر میں آئی۔ اس نے مجھ سے درخواستیں کی کہ اس گھر کو چھوڑ دوں، یہاں سے چلا جاؤں، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، مگر میرے سوال پر یہ بھی بتا دیا کہ وہ کسی اور جگہ پر مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے پھر کہا میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ نہ جانے کتنے عرصے پہلے یہ برائی کی طاقتوں کو دی جا چکی ہے، مگر میں اپنی محبت سے ملنے کے لیے یہاں موجود تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے آپ کو ہلکی روشنی میں بہت وسیع میدان میں موجود پایا۔ ہر طرف خاموشی تھی، سفید رنگ ہر طرف پھیلنا شروع ہوا، اور پھر وہ میرے سامنے موجود تھی، بہت غمگین مگر مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ میں رو رہا تھا، خوف زدہ تھا، مگر اس کی طرح بھاگ رہا تھا، اس سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ غمگین تھی، مگر زندگی والی محبت اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ ہم جدا ہو چکے ہیں، کوئی نظر نہ آنے والی دیوار ہمارے درمیان موجود تھی۔ میری محبت، میری پیاری، اس نے مجھے ایسے چھوا جیسے جنت مجھے مل گئی ہو، مگر پھر مجھے دور کر دیا۔ میں آنسوؤں میں ڈوبا ہوا اس سے جدا ہو گیا۔ कुछ देर बाद मैंने अपने आप को दोबारा अपने कमरे के अंधेरे में मौजूद पाया। फिर एक रोज पेपर और मैं कमरे में अकेले थे। मैं बाइबल पढ़ रहा था जो मुझे अब बहुत अच्छी लगती थी। फिर एक आवाज़ से मैंने खिड़की के बाहर देखा। रात के अंधेरे में देखते देखते सूरज मेरे सामने था। सूरज मेरे सामने तेजी से हरकत कर रहा था, फिर शदीद तरीन हवा चलती नजर आई। सूरज तेजी से डूब गया, अंधेरा छाया, फिर सूरज दोबारा आ चुका था। कितनी तेजी से वो चल रहा था, फिर रात आ गई। वक्त तेजी से गुजरने लगा। चंद सेकंड्स में सूरज सफर पूरा कर रहा था। दिन रात, रात दिन में बदल रही थी, तेज और तेज। मैंने मुड़कर पेपर को देखा, वो सो रहा था। मैंने आवाज दी मगर उसने कोई तवज्जो ना दी। मैंने छूकर उसे उठाने की कोशिश की मगर हाथ लगने पर मुझे पता चला कि वहां तो सिर्फ उसकी मिट्टी पड़ी हुई है। मैं हैरान खड़ा था, यानी वाकई उन चंद मिनटों में ना मालूम कितना जमाना गुजर चुका है। ये सब कुछ क्या है, मेरी कुछ समझ में ना आया। उफ, कमरे में हर चीज पर मिट्टी की दबीस तह जम चुकी थी, जो वक्त ने उस पर डाल दी थी। हर चीज पुरानी हो चुकी थी। मैंने आईने में अपने आप को देखा। 50 साल आदमी अब इंतहाई बूढ़ा नजर आ रहा था, झुर्रियों भरा चेहरा, और मैं कितनी थकन महसूस कर रहा था। मेरी बहन, क्या वो भी मर चुकी है? यकीनन ये इब्तदा थी हर चीज के खात्मे की। मैं अपने बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से बाहर जाकर देखने की हिम्मत ना कर सका कि मेरी बहन का क्या हाल है। वक्त ने एक बार फिर तेजी से गुजरना शुरू किया और फिर दोबारा असली हालत में आ गया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर सो गया। जागा, पुरानी बातें याद आ रही थी, मगर क्या मैं सदियां गुजरने के बाद अब भी जिंदा था, जबकि पेपर मर चुका था? कमरा बदला हुआ नजर आ रहा था, हर चीज पर मिट्टी की मोटी तह थी। मैं कुर्सी पर खड़ा हुआ मगर सदियों पुरानी अपनी लाश कुर्सी पर रखी देखी। उफ, ये क्या हो गया था? बाहर मैंने सूरज को डूबते देखा, मगर हजारों लाखों साल गुजरने के बावजूद ये मकान कैसे अपनी जगह मौजूद है? मैं हैरान करने वाली सोचों के दरमियान खड़ा था। मेरी रूह इन अजीब हालात में खड़ी थी, न जाने कितना ही वक्त गुजर गया। मैं देख रहा था कि रातें बहुत तवील हैं और दिन भी उतने ही लंबे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के पुराने वक्त जितने हुए, मगर बाहर नाकाबले बयान मैदानी इलाका था जहां मुकम्मल खामोशी थी, तन्हाई। साल गुजरते गए, मेरा दिमाग परेशान था। एक तरफ सफ़ेद रोशनी नज़र आई, शायद ये वही दुनिया थी जहां मैं पहले रहता था। फिर वो रोशनी देखते देखते एक सब सितारे में तब्दील हो गई। वो सितारा बड़ा होना शुरू हुआ और मेरे दिमाग में सब्ज पत्थर की बनी हुई इमारत की याद ताज़ा होने लगी। साल गुजर गए, रात की तारीखी छा गई, नाकाबले बर्दाश्त अंधेरा। कई सालों की रात, कदमों की आवाज़ें आईं। मैंने उस जानिब देखा, उफ, ये तो वही खौफनाक सूअर के मुंह वाली मखलूक थी। मैं बेचारगी और खौफ महसूस कर रहा था। न जाने कितना ज़माना गुजर गया। फिर रोशनी आई और 200 गज के फासले पर इमारत के हर तरफ खौफनाक मखलूक चढ़ी हुई थी। साल गुजर गए, सब्ज तारे की रोशनी से इमारत भी सब्ज नजर आ रही थी। खतरनाक मखलूक वहाँ मौजूद थी। फिर वहाँ आग लगी नजर आई, वो मखलूक चिल्ला रही थी। सुर्ख और सब्ज रोशनी, खतरा, कुछ खतरा है। हाँ, सूरज कितना करीब था, कितना करीब। फिर मैं बुलबुले की तरह हवा में तेजी से उड़ने लगा। नीचे बहुत दूर इमारत गंदी मखलूक समेत जलती हुई नजर आई। दुनिया उस आग की रोशनी से मुतासिर नजर आ रही थी। फिर वो इमारत जमीन के नीचे तपती नजर आई, जहां से खून के रंग के बादल निकले। इमारत की जगह बहुत बड़ा गड़ा बन चुका था। फिर सूरज के शोलों से जमीन की हालत खराब हुई। आग, शदीद आग, ग्रेव ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग सोचों से भरा हुआ था। नीली रोशनी से बादलों में घिरी हुई गोल गेंदों की मानिंद ग्लोब्स निकलना शुरू हुए, जो आहिस्तगी से मेरी जानिब बढ़ रहे थे और मेरी तन्हाई में कमी कर रहे थे। एक करीब आया और मैं उसके अंदर मौजूद था। मैं हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी मोहब्बत मुझे दोबारा मिलने वाली है। मुझे किसी ने छुआ, मुड़कर देखा, हाँ, ये वही थी। उसकी झलक मेरी रूह में जज़ब हो रही थी। वो बोली, डियरेस्ट, न जाने कितनी देर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, मगर फिर स्याह बादल दूर से आते दिखाई दिए। उन स्याह बादलों की वजह से मेरा महबूब मुझसे जुदा होने वाला था और उसकी आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया, क्या वो फिर एक मर्तबा मुझसे जुदा हो जाएगी? उसने आहिस्तगी से कहा, उन तारीख बादलों के यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारे पास से जाना होगा। और फिर वहाँ तारीकी फैल गई, इंसानी सोच से ज़्यादा वक्त गुजर गया और वो मुझसे दूर जाते हुए दूर गुम हो गई। मैं एक अजीब दुनिया के दरमियान मौजूद था। हाँ, मेरी अपनी दुनिया में भी वो कितने थोड़े अरसे मेरे करीब रही। मुझ पर गम की कैफियत तारी थी। साल गुजरे, सदियां भी गुजर गईं। मैंने वही घड़ा देखा, उसमें अपने आप को डूबते हुए महसूस किया और अब मेरे सामने मनहूस घर मौजूद था अपनी असली हालत में। मैं उसके करीब गया, ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा था, मगर अब उसकी जिसामत नाकाबले बयान बुलंद थी। मैं उस जगह आया जहाँ पत्थर से मैंने अजीब मखलूक को मारा था। अब मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और मैं जान चुका था कि इस मखलूक पर हमला दर हकीकत उस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है जिसमें अब मैं मौजूद हूँ। ये पत्थर सब्ज़ रंग का था, मगर अब अपने रंग बदल रहा था। बड़ा दरवाज़ा खुला और अंधेरे में सुअर के मुंह वाली चीज़ों के हंसने की हल्की सी आवाज़ आई। उस कमरे में जो चीज़ें मौजूद थीं वो मुझे देखकर घबरा गईं, जिससे मैं घबराहट का शिकार हुआ और दोबारा अपने कमरे में था। खिड़की से बाहर झांका, सूरज की रोशनी बाग में पड़ रही थी। मैंने सोचा कि ये सब कुछ क्या था। मुझे ख्याल आया कि पेपर को बुलाऊं जो मेज़ के करीब था, मगर ये क्या, वहाँ मिट्टी की शक्ल में सिर्फ उसकी बाकियात मौजूद थीं। कई हफ्ते गुजर गए। अगर पेपर की ये हालत ना होती तो मैं सोचता कि वो सब मेरा ख्वाब था। मैं खौफ में मुब्तला हो चुका था। एक और कुत्ता पाल लिया। वक्त गुजरता रहा, फिर एक रात मुझे अजीब सी आवाज़ आई, कुत्ता गुर्राया। मैं बाहर भागा, कुत्ता खौफजदा नज़र आ रहा था। पालतू बिल्ली भी खौफजदा अंदाज में खड़ी थी। बंदूक मेरे हाथ में थी, मगर खौफ ने मुझे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। मुझे कुत्ता नज़र आ रहा था जिसके गिर्द भयानक सब्ज़ रंग मौजूद था। मैं दीवार से लगा खड़ा था और खिड़की में सब्ज़ धब्बा नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से बाहर की चीज़ें नज़र आना बंद हो गई थी। किसी चीज़ के जलने की बदबू आई। कुत्ता तकलीफ़ की आवाज़ निकाल रहा था। दूर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया और भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। सुबह जायज़ा लिया, किसी के कदमों के निशान ना मिले। क्या मैंने ख्वाब देखा था, मगर ये क्या। कुत्ते के जिस्म के कुछ हिस्से की खाल जल चुकी थी। एक हाथ का निशान वहाँ मौजूद था, पहले पेपर और अब ये कुत्ता। गरीब। दोपहर को बहन ने बताया कि कुत्ते ने सुबह से कुछ नहीं खाया और सख्त खौफजदा है। शाम तक उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। रात के 2 बज गए, कुत्ते ने हरकत शुरू की। दूर से मुझे रोशनी नजर आई हाथ की मानिंद। हाँ, कुत्ते का ज़ख्म भी हाथ के निशान की तरह था। वो रोशनी इस जानिब आई, कुत्ता खौफजदा था। मेरा दिमाग भारी हो रहा था। मैं सो रहा था या जाग रहा था कुछ पता नहीं। हरकत की हिम्मत ना थी। सब्ज़ रंग यकीनन दूसरी दुनिया से आया था। मुझे महसूस हुआ कि खिड़की से 2 आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं ना चाहते हुए भी अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ गया। अपने आप को रोकने की कोशिश की, मगर ना रोक सका। दरवाजे के बाहर कोई मौजूद था। मेरा हाथ ना चाहते हुए भी दरवाजे को खोल रहा था। मेरा पैर दरवाजे के धक्का लगने से पीछे हो रहा था। मेरे खुदा, मेरी मदद कर। दरवाज़ा मेरा अपना हाथ खोलकर अपनी मौत का सामान कर रहा था। फिर एक झटके से मैंने हाथ रोका, मैं वहाँ गिर गया। जागा तो अंधेरा था। जल्दी से दरवाजे को मजबूती से दोबारा बंद किया, जो मुकम्मल नहीं खुला था। दिमाग सोचने से कासिर था। मेरी बहन खाना तैयार कर रही थी, वो मुतमईन थी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। कितनी अजीब बात थी कि इन तमाम हालात ने उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं किया था, अगरचे वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा, सूरज चमक रहा था। मैं बाहर गया, कुत्ते को देखा जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। और बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा था। उसके सब जख्म का धब्बा बहुत नुमाया और बड़ा हो चुका था। बहन उसको प्यार करने वाली थी, मगर मैंने रोका कि एहतियात करो। कुत्ते ने खुराक को देखा भी नहीं। मैंने बहन को कुछ नहीं बताया। रात आ गई, दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मजबूती से बंद किया, बिस्तर पर गया और सो गया। रात को शदीद बुखार से मेरी आँख खुली। ये क्या, अंधेरे में कोई चीज़ चमक रही थी। उफ, मेरी कलाई के करीब सब्ज धब्बा मौजूद था। मैं परेशान हुआ। हाँ, कुत्ते ने मुझे प्यार किया था, जिसका जख्म मुझ में मुंतकिल हो चुका था। मैं कांप रहा था। दिन गुजर गया। दूसरे दिन मैंने कुत्ते को बंदूक से मार कर दफना दिया। कलाई का सब्ज जख्म बड़ा हो रहा था। 6 दिन गुजर गए। मैंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। हाथ से होता हुआ जिस्म में ये जख्म आ चुका था। मौत इस जख्म के साथ जीने से कहीं बेहतर थी। मैं कितना थका हुआ था। दूर तहखाने से वहाँ के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। अजीब कदमों की आवाज़ मेरे करीब आ रही थी। दरवाज़ा खुल रहा था। मेरे खुदा, मेरी मदद कर। उफ, ये क्या, यहाँ पर किताब ख़त्म हो गई है, मैंने कहा। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या वो आदमी पागल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों ने फैसला किया कि नदी में मजीद नहीं जाएंगे। अब हम ड्राइवर के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो आया तो हमने उससे पूछा कि क्या उसने उस घर के मुतालिक और वहाँ की पुरिसरार चीज़ों के बारे में सुना है। वो बोला, हाँ, मगर ये तो बहुत पहले की बात है। अच्छा, तुम लोगों से पूछो, इस अरसे में हम जाने की तैयारी करते हैं। वो गया, थोड़ी देर बाद वापस आया और बताया कि एक बूढ़े आदमी ने बताया कि हाँ, बागों के दरमियान एक घर मौजूद है, बल्कि घर का खंडर। उसकी पैदाइश से पहले से वहाँ कोई नहीं रहता। गांव का कोई आदमी कई नस्लों से वहाँ नहीं गया, क्योंकि वो शैतानी और गंदी कुवतों की आमाजगा है। हाँ, बहुत पहले एक आदमी जो कि अजनबी था वहाँ गया। वो वापस गया और 3 माह बाद बहुत से खच्चरों और बूढ़ी औरत के साथ वहाँ दोबारा गया। फिर इसी तरह वो आदमी अपने सामान के साथ वहाँ जाता नजर आता। कई साल गुजर गए। अचानक एक रोज़ वो वहाँ गया और फिर हमारे पास आया और बताया कि जहाँ घर था वहाँ अब एक बहुत बड़ा घड़ा है। हम हैरान हुए और हैरत से वहाँ गए। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा घड़ा नज़र आ रहा था, मगर डायरी किसकी थी ये कभी भी इल्म ना हो सका। हम उस पुरिसरार जगह से वापस आ गए। हाँ, अब भी मेरे ख्वाबों में वो बड़ा घड़ा दरख्तों के दरमियान नज़र आता है, और पानी की बुलंद होती हुई आवाज़ें भी। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com